नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में एक ही चरण और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जमकर प्रचार किया। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में कुल 4023 उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल में 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और 8000 से अधिक बूथों को अधिक संवेदनशील घोषित किया है। दोनों राज्यों की मतगणना केरलम, असम और पुदुचेरी के साथ 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोग ने कहा कि दिल्ली स्थित विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों सहित 17 देशों के कुल 34 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को ईवीएम का प्रदर्शन दिखाया गया और मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने मॉक पोल में भी हिस्सा लिया। प्रतिनिधि कल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे, जहां वे वितरण केंद्रों और जिला नियंत्रण कक्षों और मीडिया निगरानी केंद्रों सहित अन्य सुविधाओं का दौरा करेंगे। वे इस महीने की 23 तारीख की सुबह वास्तविक मतदान भी देखेंगे। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी चाहे क्रूड हो चाहे एलपीजी हो, उसके प्राइसेस में बहुत इंक्रीज देखा गया है, वॉलेटिलिटी देखी गई है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा है कि पश्चिमी बंदरगाहों पर कंटेनरों के ठहराव के समय में 97% की कमी से निर्यातकों को राहत मिली है। श्री मंगल ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि समावेशी विकास के साथ भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विश्वविद्यालय में उपसभापति ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने की प्रेरक शक्ति होगी। उन्होंने छात्रों को नवाचार, कड़ी मेहनत और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज म्यूनिक पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा औद्योगिक सहयोग की रूपरेखा और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए प्रशिक्षण में सहयोग समझौतों को लागू करने के बारे में भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारतीय नौसेना 23 अप्रैल को नई दिल्ली में नौसेना नागरिक समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को बढ़ाने में नौसेना कर्मियों के अमूल्य योगदान को मान्यता देना है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए चयनित नौसेना कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा की पालकी भी केदारनाथ धाम पहुंच गई है। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 74 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 5वें नंबर पर है। पंजाब पहले और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।